पृष्ठ संख्या 320। सूफियों के प्रेम संबंधी सिद्धांतों की चर्चा करने के बाद उनके ज्ञान संबंधी सिद्धांतों की चर्चा कर लेना भी समीचीन है। प्रेम के समान ज्ञान का भी महत्व सूफी सिद्धांत में है। सूफी प्रेम के समान ज्ञान प्राप्त करने पर भी अत्यधिक जोर देते हैं। उनका कहना है कि बिना ज्ञान प्राप्त किए मनुष्य कुछ भी करने में समर्थ नहीं होता। परमात्मा, सृष्टि, साधना आदि बिना ज्ञान के संभव नहीं। एक हदीस का हवाला दिया जाता है कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए चीन तक जाना चाहिए। ज्ञान की प्राप्ति स्त्री पुरुष सभी के लिए आवश्यक बताई गई है। ज्ञान दो प्रकार के कहे गए हैं, इल्म सांसारिक मानवीय ज्ञान और मारिफ आध्यात्मिक सच्चा ज्ञान। मारिफ और इल्म दो बिल्कुल भिन्न वस्तुएं हैं। साधारण ज्ञान को इल्म कहते हैं और परमात्मा विषयक सूफियों के रहस्यमय ज्ञान को मारिफ कहते हैं। इल्म की प्राप्ति मनुष्य की चेष्टा से तथा शिक्षक की सहायता से संभव होती है। हुज़वीरी का कहना है कि पृष्ठ संख्या 321, परमात्मा का ज्ञान इल्म मारिफत है जिसके द्वारा परमात्मा को उसके पैगंबर और संत जान पाते हैं। कश्फ पृष्ठ 16। जून नून ने बतलाया है कि जो हम आँखों से देखते हैं वह सांसारिक ज्ञान है, लेकिन जो हृदय जान पाता है वह सच्चा ज्ञान है। स्ट अमीनी ई पृष्ठ 309। इल्मे मारिफत मस्तिष्क की क्रियात्मक शक्ति का फल नहीं है, बल्कि संपूर्ण रूप से यह परमात्मा की इच्छा और अनुग्रह पर निर्भर करता है। मारिफ वास्तव में भगवत कृपा से ही प्राप्त होता है, जबकि मनुष्य अपनी चेष्टाओं के द्वारा सांसारिक शिक्षकों की सहायता से इल्म हासिल कर सकता है। परमात्मा अनुग्रह पूर्वक आध्यात्मिक ज्ञान मारिफ उसे ही देता है जिसे उसने इसके योग्य बनाया है। परमात्मा के अनुग्रह का यह वह प्रकाश है जो हृदय को प्रकाशमान कर देता है और मनुष्य की संपूर्ण शक्तियों शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक को चकाचौंध करने वाली अपनी किरणों से अभिभूत कर देता है। इस ज्ञान के द्वारा ही साधक परमात्मा के दर्शन कर पाता है और इस प्रकार से उसका साक्षात्कार करते हुए उसके साथ एकमेक हो जाता है। निफारी ने बताया है मी ई पृष्ठ 72 कि परमात्मा के खोजी तीन प्रकार के हैं। पहले तो वे हैं जिन्हें परमात्मा का उपासक कहा जा सकता है। ये स्वर्ग की अभिलाषा से या चमत्कारों की शक्ति की प्राप्ति के लिए उपासना करते हैं। दूसरे वे हैं जो धार्मिक तत्ववेत्ता और शास्त्रीय ज्ञान को प्राप्त करने वाले पंडित हैं। वे परमात्मा के ऐश्वर्य से ही परमात्मा का परिचय प्राप्त करते हैं। वे विभूतियों से युक्त परमात्मा को खोजते हैं, लेकिन उसे नहीं पाने के कारण कहते हैं कि वह अज्ञेय है। वे कहते हैं कि हम लोग जानते हैं कि उसे हम लोग नहीं जान सकते हैं और यही हमारा ज्ञान है। और तीसरे आरिफ ज्ञानी हैं जो भावाविष्टावस्था में परमात्मा को प्रत्यक्ष करते हैं। अतएव हम देखते हैं कि मारिफ परमात्मा के एकत्व का बोध है। पृष्ठ संख्या 322। इसके द्वारा मनुष्य समझ पाता है कि भिन्न की प्रतीति होना मिथ्या है, एक भूल भुलैया है। यह ज्ञान जब मनुष्य को होता है तभी वह अपने आप को जान पाता है, और अपने आप को जानने का मतलब परमात्मा को जानना है। वह अपने आप में सृष्टि का एक छोटा सा संस्करण है और उस सृष्टि की आँख है जिसमें परमात्मा अपने आप को तथा अपने कार्यों को देखता है। यह सृष्टि असत से प्रतिबिंबित होने वाली परमात्मा की गुणावलियों और नामावलियों का समूह है। अतएव मनुष्य जो इस सृष्टि का छोटा सा संस्करण है और जो संपूर्ण सृष्टि को अपने भीतर छिपाए हुए है, उस परमात्मा की गुणावलियों और नामावलियों को अपने भीतर ग्रहण किए हुए है। इस ज्ञान को प्राप्त नहीं करने के कारण अज्ञानी जीवन भर भटकता रहता है। जब तक उसका हृदय अज्ञान के पर्दे से ढका हुआ है, वह अपनी वासनाओं और इंद्रियों का गुलाम बना हुआ रहता है और परमात्मा का चेहरा उसे नहीं दिख पड़ता। लेकिन जब परमात्मा के आकर्षण का जादू उस पर काम करने लगता है तो उसके अंतर से इंद्रियगत विषयों का तिरोभाव होने लगता है और अंत में उसका हृदय विशुद्ध हो जाता है और वह परंपरा के साथ एकत्व का बोध करता है। इस एकत्व का बोध उसके हृदय को आनंद से परिपूर्ण कर देता है, उसके सभी कष्टों का अवसान हो जाता है। इसलिए साधक अपनी समस्त शक्ति लगाकर इस ओर अग्रसर होने के लिए सचेष्ट रहता है। मारिफ सच्चा ज्ञान परमात्मा के द्वारा ही शक्ति संपन्न होता है, अन्यथा परमात्मा को बिना परमात्मा की सहायता के नहीं जाना जा सकता। कहा जाता है कि जब परमात्मा ने बुद्धि का निर्माण किया तब उससे पूछा कि मैं कौन हूँ। बुद्धि मौन रह गई, तब परमात्मा ने अपने एकत्व का प्रकाश उस पर डाला और उसने बतलाया कि तुम परमात्मा हो। स्ट अमी मी नी ई पृष्ठ 209। अतएव सूफी मारिफ को प्रकाश मानते हैं जिसने ज्योति स्वरूप परमात्मा से प्रकाश पाया है। इसके द्वारा हृदय आलोकित हो उठता है और वह परमात्मा के एकत्व को देखने में समर्थ होता है। यह ज्ञान परमात्मा की ज्योति से ही ज्योति वाला है, अतएव अंत में यह परमात्मा की ज्योति में ही जाकर मिल जाता है। इसलिए इस ज्योति को पाने के लिए सूफी साधक परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। कूत अल कुलूब में वर्णित एक सूफी प्रार्थना इस प्रकार है, वही पृष्ठ 211। हे परमात्मा, मेरे हृदय में प्रकाश दो और मेरी कब्र में प्रकाश दो। मेरे श्रवण, मेरी दृष्टि, मेरी भावना, मेरे शरीर में प्रकाश दो। मेरे पीछे प्रकाश दो, मेरे ऊपर प्रकाश दो, मेरे नीचे प्रकाश दो। हे प्रभु, मेरे अंतर की ज्योति को तीव्र कर दो और मुझे प्रकाश दो और उसे आलोकित कर दो। यही आलोक हैं जिनकी याचना पैगंबर ने की थी, क्योंकि इस प्रकार की ज्योति का अधिकारी हमेशा के लिए उस ज्योति स्वरूप की दृष्टि में बना रहेगा। मुतजिला सिद्धांत को मानने वाले कहते हैं कि परमात्मा संबंधी आध्यात्मिक ज्ञान मारिफत वास्तव में मस्तिष्क और बुद्धि का व्यापार है, अतएव अक्लमंद आदमी ही इस ज्ञान को पाने में समर्थ हो सकता है। कश्फ पृष्ठ 268। हुजवीरी ने सिद्धांत का खंडन किया है और इस ज्ञान को हाली अर्थात हृदय प्रसूत कहा है। वह ज्ञान को हृदय का विषय मानता है, वही पृष्ठ 267। अबुल हसन नूरी का कहना है कि परमात्मा को पाने का रास्ता परमात्मा के सिवा और कोई नहीं बता सकता। अपनी बुद्धि के द्वारा मनुष्य उस परमात्मा को जानना चाहता है, लेकिन एक सीमा तक पहुंचकर उसकी गति अवरुद्ध हो जाती है और मनुष्य को अपनी असहायावस्था का बोध होने लगता है। अपनी इस यंत्रणा के समय वह परमात्मा से दया की भीख मांगता है, फिर परमात्मा की दया से ही साधक उसे जान पाता है और उसकी आत्मा को शांति मिलती है। किसी प्रकार का मानवीय ज्ञान उसकी सहायता नहीं करता, क्योंकि वह ज्ञान परमात्मा के गुणों से ही संबंध रखता है। और पृष्ठ संख्या 324, परमात्मा उन गुणों को अपने ध्यान में लगे हुए साधकों पर प्रकट करता है। ज्ञानी आरिफ के लिए स्वतंत्र जीवन, स्वतंत्र चिंतन नाम की कोई वस्तु नहीं रह जाती। जून नून मिश्री का कहना है कि परमात्मा जिस प्रकार से परिचालित करता है, उसी प्रकार वे ज्ञानी परिचालित होते हैं। उनके मुख से निकले हुए शब्द परमात्मा के बोले हुए शब्द हैं और परमात्मा की ही दृष्टि शक्ति से वे देखते हैं। परमात्मा के साथ एकत्व प्राप्त करना ही ज्ञानी का लक्ष्य होता है। जामी ने मी ई पृष्ठ 73 एकत्व प्राप्ति की व्याख्या करते हुए बतलाया है कि हृदय को एकांगी बनाना अर्थात अपने हृदय को पवित्र करना तथा परमात्मा के सिवा अन्य वस्तुओं को अपने हृदय से दूर हटाना ही एकत्व है। फिर उस हृदय में न आकांक्षाएं हों, न कामनाएं हों, न ज्ञान ही और न मारिफत ही। साधक की सभी इच्छाओं और आकांक्षाओं को उन सभी वस्तुओं से मुक्त हो जाना चाहिए जिनकी इच्छा और आकांक्षा की जाती है, और उसके बौद्धिक क्षेत्र से ज्ञान और बुद्धि विषयक सभी वस्तुओं को तिरोहित हो जाना चाहिए। परमात्मा ही उसके चिंतन का एकमात्र विषय होना चाहिए और उसे अन्य किसी वस्तु का ज्ञान नहीं रह जाना चाहिए। कहा जाता है कि निफारी को यह देववाणी सुनाई पड़ी थी कि अगर तुम अपने को एक सत्ता मानते हो और मुझे अपनी सत्ता का कारण नहीं समझते हो, तो मैं अपने चेहरे को ढक देता हूँ और तुझे अपना ही चेहरा नजर आता है। इसलिए इसे समझो कि तुम्हें क्या दिखाई पड़ता है और क्या छिपा हुआ है। सूफी साधक मारिफ और धार्मिक विश्वास में फर्क करते हैं। उनका कहना है कि मारिफ अग्नि के समान प्रज्वलित होने वाली वस्तु है, जबकि धार्मिक विश्वास प्रकाश की तरह है। जिस व्यक्ति को मारिफ आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो गया है, वह परमात्मा के साथ एकमेक होकर देखता है, पृष्ठ संख्या 325, तथा परमात्मा में वास करता हुआ शांति पाता है। और धर्म प्रवण व्यक्ति उसकी ज्योति के सहारे देखता है तथा परमात्मा की उपासना को ही साध्य मानता है। ज्ञानी आरिफ यह मानता है कि परमात्मा न किसी को पुरस्कृत करता है और न किसी को दंड देता है। सत्य और असत्य की कोई वास्तविकता नहीं है, वे मिथ्या हैं। ज्ञानी परमात्मा के साथ सीधा संपर्क और आंतरिक प्रकाश को ही अपने लिए कानून मानते हैं। इस दृष्टि से विचार करने पर यह परिणाम निकाला जा सकता है कि नैतिक और धार्मिक नियम कानून आरिफ ज्ञानी के लिए बेकार हैं तथा पोथियों में लिखे हुए कानून उनके लिए कुछ मतलब नहीं रखते। अबुल हसन खुरकानी ने कहा है, मैं नहीं कहता कि स्वर्ग और नरक का अस्तित्व नहीं है, लेकिन कहना है कि वे मेरे लिए कुछ नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने उन दोनों को बनाया है और मैं जिस स्थान पर हूँ वहाँ किसी भी निर्मित वस्तु का स्थान नहीं है। ज्ञानी आरिफ के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि उनके लिए मजहब की भिन्नता कोई अर्थ नहीं रखती और उनके दृष्टि में सभी समान है। इब्न अल अरबी के निम्नलिखित कथन से इस कोटि के सूफी साधकों के दृष्टिकोण पर पूरा प्रकाश पड़ता है। इब्न अल अरबी का कहना है, जो सूर्य में परमात्मा को पूजते हैं वे सूर्य को देखते हैं, जीवधारियों में उसकी पूजा करने वाले एक जीवधारी को देखते हैं तथा निर्जीव पदार्थों में उसको पूजने वाले निर्जीव पदार्थ देखते हैं, और जो उसे अद्वितीय और अतुलनीय समझकर उसकी पूजा करते हैं वे उसके जैसा अन्य किसी वस्तु को नहीं देखते। किसी एक मत के साथ एकांत भाव से जड़ित मत हो कि जिससे उसे छोड़ अन्य सब में अविश्वास करने लगो। इससे तुम बहुत सी अच्छाइयों को नहीं पा सकोगे। इतना ही नहीं बल्कि तुम सत्य को भी नहीं समझ पाओगे। परमात्मा जो सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान है, उसे किसी एक विशेष मत में बांधा नहीं जा सकता, क्योंकि परमात्मा ने कहा है, कुरान 2:109, जहाँ भी तुम दृष्टि फेरो परमात्मा का चेहरा, पृष्ठ संख्या 326, वही है। जिसमें जिसका विश्वास है उसी को बड़ा मानता है, उसका देवता उसी का बनाया हुआ है और उसे बड़ा मानकर वह अपनी ही बड़ाई करता है। अतएव वह दूसरों के विश्वासों के प्रति संदेह प्रकट करता है। अगर उसे विवेक होता तो वह ऐसा नहीं करता। उसकी नापसंदगी उसके अज्ञान के कारण है। अगर वह जुन्नैद के कथन को जानता कि पानी जिस बर्तन में जाता है वही रूप धारण कर लेता है, तो वह दूसरों के विश्वास में दखल नहीं देता, बल्कि विभिन्न मत मतांतरों में परमात्मा के दर्शन करता। वही पृष्ठ 87-88। सूफी मार्ग की अंतिम मंजिल प्रेम और मारिफ ज्ञान है, जिनके द्वारा साधक परमात्मा के दर्शन करता है और अंत में उसके साथ एकमेक हो जाता है। जब साधक साधना द्वारा अपने समस्त कलुष, समस्त वासनाओं को दूर करने में समर्थ होता है और अंत में अपने अहम को भी भुला देता है, तभी परम प्रियतम के साथ उसके मिलन का रास्ता साफ हो जाता है। उसकी सारी बाधाएं, सारी रुकावटें दूर हो जाती हैं। फिर प्रेम के द्वारा जो प्रारंभ से ही उसका संबल रहा है, वह उस परम प्रियतम को पाता है। साधक परमात्मा का सानिध्य प्राप्त करने पर प्रेम और मिलन के प्रकाश में परमात्मा के ऐश्वर्य को देखता है और इस संसार में रहते हुए भी पर जीवन के रहस्यों का भेदन करता है। प्रेम ही वह वस्तु है जिसके द्वारा वह प्रियतम के मिलने के मार्ग पर अग्रसर होता है। प्रेम के द्वारा ही उसे मारिफ ज्ञान की प्राप्ति होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि मारिफ की प्राप्ति के साथ ही साथ प्रेम खत्म हो जाए। प्रेम और ज्ञान अपने विशुद्ध रूप में साथ बने रहते हैं, बल्कि ऐसा भी कहा जा सकता है कि एक के बिना दूसरा संभव नहीं। यह ज्ञान शुष्क ज्ञान नहीं है, यह ज्ञान परम प्रियतम के मिलन में सहायक होता है। अलसराज अमी नी मी ई पृष्ठ 209 का कहना है कि परमात्मा से सचमुच वही प्रेम कर सकता है जिसे विशुद्ध ज्ञान प्राप्त हो जाए, पृष्ठ संख्या 327, और जो उससे सचमुच प्रेम करता है वही वास्तव में उसका ज्ञान प्राप्त किए हुए है। आध्यात्मिक जीवन को सूफी एक यात्रा सफर समझते हैं और परमात्मा को पाने की इच्छा रखने वाले साधक को सालिक कहते हैं। साधक परमात्मा का ज्ञान मारिफ प्राप्त करता हुआ क्रमशः अपने चरम लक्ष्य परमात्मा के साथ एकमेक होना तक पहुंचता है। इस साधना के पथ पर अग्रसर होने को ही सूफी मार्ग तरीका कहते हैं। साधक अपनी बुराइयों का त्याग करता हुआ, अपने आत्मा के कलुष को मिटाता हुआ इस मार्ग पर अग्रसर होता है तथा परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करता है। उस अवस्था में पहुंचने पर साधक की आत्मा का लय हो जाता है, जिसे सूफी फना कहते हैं। लेकिन यात्रा का अंत उसके बाद होता है। यह अंत परमात्मा के साथ एकमेक होना है। यह शांतावस्था है जिसमें आत्मा मानो परमात्मा में वास करने लगता है। यह बका स्थिति है। सूफी मार्ग की कई मंजिलों, अवस्थाओं और मुकामों की बात कही जाती है। इन मंजिलों आदि के संबंध में सूफियों में मतैक्य नहीं है। भिन्न भिन्न प्रकार से उन्होंने सूफी मार्ग का वर्णन किया है। कितने सूफी साधक परमात्मा तक पहुंचने की चार मंजिलें और चार अवस्थाएं मानते हैं, कितने ऐसे सूफी साधक हैं जो तीन ही मंजिल मानते हैं, और कितने 12 मुकामात और अहवाल मानते हैं। लेकिन इस बात में सभी एक मत है कि प्रत्येक मंजिल की विशिष्टताओं और गुणों को प्राप्त किए बिना दूसरी मंजिल पर जाना संभव नहीं। साधक इन मंजिलों को अपनी साधना के द्वारा तो तय करता ही है, फिर भी जब तक भगवत कृपा नहीं होती उसका मार्ग पर अग्रसर होना संभव नहीं। अवारीफ उल मारीफ में कहा गया है कि मनुष्य और परमात्मा के बीच जो व्यवधान है उसे दूर करने के लिए सूफी साधक को चार मंजिलें पार करना आवश्यक है। सबसे पहले मुरीद परमात्मा को पाने की उत्कट अभिलाषा द्वारा हृदय के पृष्ठ संख्या 328 ऊपर पड़े हुए पर्दे को दूर करने की चेष्टा करता है, लेकिन परमात्मा के लिए जिस प्रेम का वह अनुभव करता है उसे किसी पर प्रकट नहीं करता, सिवा वज्द आविष्टावस्था के, जबकि वह एक प्रकार के आवेश में रहता है। परमात्मा के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करना वह गुनाह समझता है। इसके बाद वह उस मंजिल पर पहुंचता है जब वह तफरीद आंतरिक असंगता का अनुभव करता है। उस अवस्था में वह प्रेम से पागल बना रहता है। उसके लिए परमात्मा के प्रेम के सिवा और किसी अन्य वस्तु का अस्तित्व नहीं रह जाता। बाह्य व्यापारों तजरीद से उसका कोई भी मतलब नहीं रह जाता। उसकी तीसरी मंजिल उस समय शुरू होती है जब वह अपने हृदय के आईने को परमात्मा की विभूति के समक्ष रखता है और उसी के नशे में छका हुआ मस्त मौला बना रहता है। चौथी और अंतिम मंजिल में उसकी जिह्वा जिक्र भगवान के स्मरण में तथा हृदय फिक्र भगवान के ध्यान में लगा हुआ रहता है। जीवा और हृदय जब इस प्रकार से प्रवृत्त रहते हैं तब आत्मा मुशाहिदा परमात्मा की विभूति के दर्शन में लगा रहता है। इस अवस्था में साधक निर्विकार और अस्तित्व ज्ञान शून्य हो जाता है। उसे बोध होता है जैसे उसके अपने अस्तित्व का भी लोप हो गया है, अर्थात उसे अपनी स्वतंत्र सत्ता का ज्ञान नहीं रहता। सूफी मार्ग के पीछे सूफियों का यह विश्वास काम करता है कि परमात्मा और मनुष्य के बीच एक बहुत बड़ा व्यवधान है। इस व्यवधान का स्पष्टीकरण एक हदीस से हो जाता है जिसमें कहा गया है कि परमात्मा 70,000 प्रकाश और अंधकार के पर्दों के पीछे है, और अगर परमात्मा इन पर्दों को हटा दे और उसके चेहरे को कोई देख ले तो वह उसी में रम जाए। इनमें भीतरी पर्दे तो प्रकाश के हैं और दूसरे अंधकार के। आत्मा परमात्मा की ओर जब अग्रसर होता है तब उसे 7 मंजिलें पार करनी होती हैं। प्रत्येक मंजिल में 10,000 पर्दे दूर होते हैं। पहले अंधकार वाले पर्दे दूर होते हैं, उसके बाद प्रकाश वाले। इन पर्दों के दूर होने पर आत्मा अपने पृष्ठ संख्या 329 समस्त इंद्रियगत और भौतिक गुणों से परे होकर परमात्मा के साथ साक्षात्कार करता है। संभवतः इसीलिए इतने सूफी साधकों ने सूफी मार्ग की 7 मंजिलें बतलाई हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला, उबूदियत। इसमें साधक अपने हृदय को पवित्र करने की चेष्टा में लगता है जिसमें कि वह आगे की ओर बढ़ सके। शरीयत के अनुसार वह परमात्मा की सेवा में अपने को लगा देता है। 2, इश्क। परमात्मा का प्रेम उसके हृदय में उत्पन्न होता है और साधक इस मंजिल में फक्र गरीबी को वरण करता है। 3, जुहद। इसमें सांसारिक इच्छाओं का अवसान हो जाता है। 4, मारिफत। इसमें साधक परमात्मा के गुण स्वभाव कर्म का ध्यान करता है। 5, वज्द। भावाविष्टावस्था। परमात्मा के एकत्व का ध्यान करते करते साधक में भावाविष्टावस्था उत्पन्न होती है। 6, हकीकत। इसमें साधक को परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होता है और वह परमात्मा पर पूर्ण रूप से निर्भर तवक्कुल करता है। 7, वस्ल। इसमें साधक जैसे परमात्मा का साक्षात्कार करता रहता है। फना और बका के पहले की यह मंजिल है। बहुत ऐसे सूफी साधक हैं जिन्होंने सूफी मार्ग की मंजिलों का वर्णन करते हुए तौबा को पहली मंजिल कहा है। तौबा में आत्मा सांसारिक सुखों को त्याग कर अपने लक्ष्य को समझते हुए आगे की ओर बढ़ता है। उनके अनुसार इसके बाद की मंजिलें फक्र गरीबी, जुहद विरति और तवक्कुल परमात्मा पर निर्भर करना है। इन मंजिलों को पार करने के बाद साधक रीजा संतुष्टि के मुकाम पर पहुंचता है। सूफी मार्ग की कई मंजिलें पार कर यह अवस्था प्राप्त होती है। इस अवस्था में भक्त को सब प्रकार से संतुष्टि रहती है, चाहे वह सुख में रहे अथवा दुख में रहे। वह सब कुछ को भगवान का प्रसाद समझकर खुशी के साथ ग्रहण करता है। उसे अपनी अवस्था से ना कोई शिकायत रहती है और ना कोई खास खुशी। भक्त की इस मनोदशा से भगवान भी संतुष्ट होते हैं। संतुष्टि की पृष्ठ संख्या 330। यह अवस्था एक बहुत बड़ी बात है। जिक्र अल मौत और भी आगे की मंजिल है। कितने सूफी साधकों का कहना है कि यह मंजिल साधक की प्रारंभिक अवस्था के लिए भी है और सूफी मार्ग पर अत्यधिक अग्रसर होने वाले साधकों के लिए भी है। मृत्यु का स्मरण साधक को प्रारंभिक अवस्था में पाप करने से बचाता है तथा अन्य सांसारिक प्रलोभनों से विमुख करने में सहायक होता है। जो उच्च कोटि का साधक है वह समझता है कि मृत्यु के बाद ही वह परम प्रियतम का साक्षात्कार कर पाएगा, अतः वह मृत्यु की कामना करता है। इस मार्ग की सबसे अंतिम मंजिल इन सूफी साधकों के अनुसार प्रेम और मारिफ ज्ञान है। भारतीय सूफी DE पृष्ठ 609 सूफी मार्ग की 4 मंजिलें और उन मंजिलों की 4 अवस्थाएं मानते हैं। उनमें पहली नासूत है। नासूत से उनका मतलब मनुष्य की प्रकृत अवस्था से है। इसमें साधक को शरीयत के कायदे कानूनों और पाबंदियों को मानना पड़ता है। इस अवस्था को सूफी आध्यात्मिक जगत का सबसे निचला स्तर मानते हैं, अतएव साधक के लिए यह आवश्यक माना गया है कि वह सम्यक रूप से इस मार्ग के संबंध की बातों का पहले ज्ञान प्राप्त कर ले, तब इस मार्ग पर चले। दूसरी अवस्था को वे मलकूत कहते हैं। इसमें साधक को तरीका अर्थात पवित्रता का सहारा लेना पड़ता है। मलकूत में मनुष्य का चित्त भौतिक जगत की तुच्छताओं और आवर्जनाओं से ऊपर उठ जाता है और वह पवित्र हो जाता है। वह इसमें देवदूतों के गुण प्राप्त करता है। तीसरी अवस्था जबरूत की है, जब साधक आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करता है जिससे परमात्मा के मिलन के मार्ग की बाधाएं प्रायः नष्ट हो जाती हैं। यह मंजिल मारिफ ईश्वरीय ज्ञान की है। राग विराग से अतीत होकर साधक को ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसमें चौथी अवस्था लाहूत के लिए वह प्रस्तुत होता है। इस अंतिम मंजिल को सूफियों ने हकीक कहा है। हकीक से उनका मतलब परम सत्य से है। पृष्ठ संख्या 331। अल हुजवीरी कश्फ पृष्ठ 371 के अनुसार सूफी मार्ग की तीन ही मंजिलें हैं। पहले को मुकामात कहा है और उसका मतलब यही समझा जाता है कि साधक अपने मार्ग पर कहाँ तक अग्रसर हुआ है। इस मंजिल में साधक को काफी कष्ट सहन करना पड़ता है और एकांत भाव से अपने को आने वाली मंजिल के लिए तैयार करना पड़ता है। इसमें परमात्मा उसका सहायक होता है क्योंकि बिना उसकी कृपा के साधक के लिए थोड़ा भी आगे बढ़ना संभव नहीं। इसमें साधक अपने अहम को खोकर उन गुणों को प्राप्त करता है जिनके द्वारा वह अपनी आखिरी मंजिल तक पहुंचने में समर्थ सिद्ध होता है। दूसरी मंजिल अहवाल की है। यह सूफियों की भावाविष्टावस्था अर्थात उल्लास और भावातिरेक की अवस्था है। साधक पहली मंजिल पार कर इस मंजिल पर पहुंचता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि साधक को पहली मंजिल में रहते हुए भी दूसरी मंजिल का अनुभव हो जाता है। यह पहली मंजिल से भिन्न प्रकार की है। यह दूसरी मंजिल बिल्कुल परमात्मा की कृपा पर निर्भर करती है। इसमें साधक का एकदम हाथ नहीं रहता। साधक को आगे बढ़ाने के लिए उस पर अनुग्रह करके परमात्मा इसको पुरस्कार स्वरूप देता है। अंतिम मंजिल तमकीन की है, जब साधक परम सत्य को पा जाता है। उसकी चरम लक्ष्य प्राप्ति की यात्रा यहीं समाप्त हो जाती है। वह परमात्मा के साथ एकमेक हो जाता है। वह पूर्णावस्था को प्राप्त हो जाता है। अपने सारे अच्छे या बुरे गुणों से परे होकर वह परम प्रियतम में वास करने लगता है। प्रियतम के प्रेम और एकत्व के प्रकाश में वह उसकी विभूतियों के दर्शन करने लगता है और इस शरीर से ही आने वाले संसार के रहस्यों का भेदन करता है। कुछ ऐसे भी सूफी साधक हैं जो सूफी मार्ग की चर्चा करते हुए तीन यात्राओं का वर्णन करते हैं। उनके अनुसार इनमें लिखित तीन यात्राएं हैं। सूफी पृष्ठ 75-76। एक, सैर इल्लाह अर्थात परमात्मा की ओर यात्रा। इसमें पृष्ठ संख्या 332। साधक इस संसार से ऊपर उठकर उस संसार में पहुंचता है जो परमात्मा के आदेश मात्र से हुआ है। इसमें साधक वाहिदियत और वहदत की मंजिल को पार करता है। इस यात्रा का अंत हकीकते मोहम्मदिया में होता है। दो, सैर फिल्लाह अर्थात परमात्मा में यात्रा। इसमें साधक परमात्मा की जात में लय हो जाता है। यह अहदियत की मंजिल है। तीन, सैर अनिल्लाह। इसमें साधक परमात्मा के गुणों से विभूषित होकर इस अभिव्यक्त होने वाले संसार में लौट आता है। यह फना के बाद बका की अवस्था है, लय के बाद स्थिति की अवस्था है।